نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں جن لوگوں نے اس کورس کو واقعی اس سوچ کے ساتھ سائن اپ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, تو قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں اور ہر کورس میں ہم سب اپنا شروع میں ہی جائزہ لیں. اللہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی کلاس کو پڑھایا ہے, شارٹ کورس ہو لانگ کورس ہو, میری پوری خواہش ہوتی ہے علم سے زیادہ لوگوں کی تعلیم کی جائے, تربیت زیادہ ہو. تو قرآن پاک ہماری تربیت کرتا ہے. آپ اس پورے کورس میں ایک طرف تو قرآن, حدیث, سنتیں, دعائیں, تجوید, گرامر اور اپنی زندگی کے ضروری مسائل سیکھیں گے. یہ بہت آسان ہے سیکھنے, الحمدللہ لوگ اس کے لیے 10-10 سال کے بھی کورسز آفر کرتے ہیں, لیکن ہمارا یہ کورس 10 سال کا نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ جو باتیں میں کرنے لگی نا, یہ آپ نے اپنے نوٹس پہ اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے اور اس کو پھر خوبصورت سا ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کر اپنے قرآن پاک کی جلد پہ لگا لیں. اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم بہت جگہ سے آپ کو مل جائے گی. آن لائن کورسز اس کا بیسٹ ریسورس ہیں میری اپنی نظر میں. پچھلے 15 سال سے الحمدللہ ہم لوگ تقریباً اس سے بھی زائد عرصے سے آن لائن کے تھرو ڈفرینٹ کورسز آفر کرتے ہیں, اور آج جتنی بھی رونق دنیا میں لگی ہوئی ہے یہ آن لائن کورسز کی بدولت ہے. اور اسی کے علاوہ آپ کو پوری دنیا میں دکھیں گے ماشاءاللہ. پاکستان میں مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ فاضلات کا کورس ہے اور بہت سارے کورسز آپ جانتے ہیں نا, 10-10 سال 8-8 سال کے کورس ہیں. ہمارے اپنے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے پاس یہ کورسز کی ہوتے ہیں. اس آن لائن کورس میں یا کسی اور ایسے کورس میں کہ جس میں آپ کو بہت ساری کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں, یہ جو کورس آپ اور میں کرنے لگے ہیں اس کی سچویشن کیا ہے بہت ضروری ہے نا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھ کرنا ہے اور آپ نے آگے جا کے آج دوسروں کو بتانا ہے تاکہ کل اور بھی آپ کے ساتھ آئیں کہ آپ کو اس کورس سے کیا ملے گا. ہر چیز میں نا اللہ تعالیٰ نے پیر بنائے ہوئے ہیں, جیسے جسم اور روح ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ایک فزیکل بینگ ہے اور ایک ہمارا انر بینگ ہے. اسی طرح سے ہمارے اس کورس کے بھی دو حصے ہیں. اصل اس کی روح وہی ہے کہ آپ کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ کروانا ہے, اس قرآن کا لفظی ترجمہ آپ کو یاد کرانا ہے, آپ کی تجوید کو بہتر کرنا ہے, اور انشاءاللہ پورے کورس کے دوران آپ اتنی دعائیں سیکھیں گے کہ اینڈ پہ آپ کو ساری زبانیں یاد ہو چکی ہوں گی. قرآن کا کچھ حصہ آپ حفظ بھی کریں گے چھوٹی چھوٹی صورتوں کی صورت میں, لیکن ابھی بالکل نہیں. یہ ساری چیزیں جو آپ کو علمی طور پہ سٹرانگ کریں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم حصہ جو اگر آپ نہیں ساتھ چلیں گے تو ہم نہیں کر سکیں گے, اور وہ ہے آپ کی کردار سازی. آپ لوگوں نے ہم پہ بہت ٹرسٹ کیا ہے. میں نے آج صبح بھی اپنے ٹیم کے لوگوں کو یہی میسج دیا تھا, آج کا دن ہماری زندگی کا بہت اہم دن ہے, آپ سب قابل مبارک ہیں کہ آج بہت سارے پیارے ساتھی آپ کے اور میرے اوپر ٹرسٹ کر کے آ رہے ہیں. کئی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں, کئی بچیوں نے جاب چھوڑی ہے یا کسی نے اپنا بچوں کو سیٹل ڈاؤن کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم سب مل کر ان کی تربیت کر سکیں. تو جب اس طرح کے کورسز ہوں تو میری نظر میں ایک استاد کہہ لیجئے, ایک انسٹرکٹر کے طور پر سب سے بنیادی چیز تربیت ہوتی ہے. جس کو لوگ رولز اینڈ ریگولیشن کہتے ہیں, جس کو لوگ پابندیاں کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جب ہم شیئر کرنے لگے نا, یہ ہم سب نے مل کے ماننی ہے اور منوانی ہے. ڈسپلن کے ساتھ اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے جان کے موقع دینا ہے دوسروں کو کہ ہمارے اندر صبر آئے, ہمیں برداشت کرنا سکھایا جائے. گویا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سانچے کے اندر سے گزار کر ہمیں شیپ اپ کیا جائے. تو آپ لکھیں کہ اس کورس کے اندر جہاں آپ کی ذہنی بالیدگی ہے نا, وہاں آپ کو شیپ اپ کیا جائے گا. ہم اتنے کیجول ماحول میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں, ہمارا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اونچی بول رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کبھی کسی نے آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں ہمارے دوستوں میں ہمارے پیاروں میں کہ میں ذرا عام آواز سے اونچا بولتی ہوں, کسی نے نہیں بتایا ہوگا. میری پیاری دوستوں نے مجھے شاید ہی کبھی کہا کہ میں تھر 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 کر کے چلتی ہوں, زمین ہلتی ہے, پاؤں مار مار کے چلتی ہوں, ہاتھ ہلاتی ہوں چلتے ہوئے. کبھی سچ بتائیں آپ کو اپنوں نے کتنا کو ٹوکا اس پہ. لوگ شاید نوٹ نہیں کرتے, یا کر بھی لیں تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, ہم کیوں برے بنے. اس کورس میں انشاءاللہ ہم نے چلتے پھرتے قرآن کا نمونہ بننا نا, جس سے ہمیں وہ عباد الرحمن کا رنگ بھی دکھے اور قد افلح المومنون کی صفات بھی آئیں, اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرتے ہوئے ہم نے ان جیسا ہونا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک چیز کو جب آپ نے کسی شیپ میں لانا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا. कोई आपको सांचे में ना डालने दे अपने आप को और फिर भी कहे कि मेरी शेप बना दो तो नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपका मेरा आज ही खुद से वादा है कि मैंने हर मुमकिन तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। चाहिए कि नहीं, ये ज्यादती नहीं है, ये आपके ऊपर एहसान है। इस इदारे में हालांकि हम कुछ भी नहीं, अभी हम बुनियादों में हैं, कोई 3-4 साल में कोई इदारा नहीं ऐसे बन जाता, ये बस अभी स्टार्ट है। हमारे पास वो साथी आते हैं जो 10-10 साल के कोर्स करके गए होते हैं, कहीं से आते हैं, और वो कहते हैं कि हमें वहां वो तरबियत नहीं मिली जो हमें यहां नजर आ रही है कि मिलेगी। ठीक है, वजह क्या है कि आपका मेरा जाहिर लोग देखेंगे, आप बस स्टैंड पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, बात कर रही हैं, मेरी आयतें किसी को नहीं याद होनी, कोई मेरे से सुरते नहीं सुनेगा, लेकिन मेरा अपना बिहेवियर बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके लिए किसी भी इदारे को हक होता है कि जो लोग आएँ उनको फ़ायदा देने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। दो तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको मैंने भी मानना है और आपने भी, एक है एकेडमिक रूल्स और एक है एडमिनिस्ट्रेशनल रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला खुद से वादा करें कि मैं अपनी कोशिश के मुताबिक जिस हद तक कर सकी मैं दोनों रूल्स को मानूंगी। आप में से जो साथी माशाल्लाह फॉर्म फिल कर चुके हैं, आपने पढ़ के फॉर्म फिल किए, मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि बगैर पढ़े कभी साइन ना करने दिया करें, उसमें लिखी भी है ये बात कि मैं इस फॉर्म के बाद डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं रूल्स रेगुलेशंस मानूंगी। तो ये एक प्लेज है ना, रूल्स हर चीज़ के हैं, छुट्टी के हैं, मैं यहाँ वो नहीं डिस्कस अभी करूँगी। दूसरे रूल्स जिससे आपकी एजुकेशनल या एकेडमिक सरगर्मियाँ इंप्रूव हो सकती हैं ना, मैं थोड़े से वो आपके साथ में रखती हूँ कि इस क्लास के माहौल को खूबसूरत करने के लिए, मुअस्सर करने के लिए मुझे और आपको क्या करना है। मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, मैं इस क्लास में आपके पास आने वाली थी 10 बजे और मैं 10:15 आई और आके जल्दी से अपनी चीज़ें समेट रही, खोल रही हूँ और मेरे एक हाथ में सेलफोन लटक रहा है, दूसरे में कर, आप सब देख रहे हैं मुझे, आपको कैसा लगेगा? आप मुतासिर होंगे मेरे इस तरह आने से? थोड़ी देर में मेरी बेल बज जाए फ़ोन की, आप परेशान होंगे? सेम चीज़ अगर मैं करूँगी तो आप परेशान होंगे? तो अगर वही चीज़ अगर आप में से किसी के साथ होती है तो इधर आपके जो भी टीचर उस वक्त होगा उस पे उसका असर भी पड़ेगा, प्लस आपके साथ वाला, आप लेट आए हैं तो क्या है, अगला साथ वाले को असर पड़ता कि नहीं? आप उनको जगह देने के लिए अपनी जगह से हिल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसको हम गो थ्रू करेंगे। वेलकम टू नूरुल कुरान क्लास रूम रूल्स एंड रेगुलेशंस। वजह क्या इसके पढ़ने की बताइए, अभी तक जो बात मैंने कही उसमें से क्या बात, ये हम क्यों रूल्स एंड रेगुलेशन देखने लगे? तरबियत के लिए। किसी भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं जहां से मर्जी मुझे खुरच खरच के मुझे खूबसूरत बना दो, अब आपके बाल नोचें, आपकी स्किन को पॉलिश करें, कुछ भी ना करते हैं ना, फिर ही कोई शक्ल निकलती है ना। तो ये आपका वो वादा पूरा किया जा रहा है इस सूरत में, राइट? तो इसके बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको एक प्रेजेंटेशन की सूरत में हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले चेकलिस्ट है आपके मेरे लिए, बिफोर यू कम, आप जब स्कूल के लिए क्लासरूम के लिए आने लगें तो कुछ चीज़ों को अपनी नज़र में रखिएगा। क्या क्या आपके पास होना चाहिए? नंबर एक, नोटबुक। किस लिए बोला? नोट्स लेने के लिए। जब पढ़ने आए और हाथ में कॉपी नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि याद रखिए लिखने से आता है। आपको लिखना नहीं आता ना तो आप लिखना ही सीख लेंगे और कुछ ना लिख सके। फिर इसी तरह पेन और सूटेबल किस्म की स्टेशनरी रखें अपने पास जिसमें हाइलाइटर हो सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि जब आप यहाँ हाइलाइटर खोलें बंद करें तो कट कट की आवाज़ ना आए। स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता लेकिन ये हमारे रिकॉर्डर को बड़ी जल्दी भी पता चल जाता है। और वैसे भी इल्म की महफिल बहुत कूल एंड काम होनी चाहिए। हमारे असलाफ जब पढ़ा पढ़ाया करते थे तो उस वक्त इतनी खामोशी होती थी कि बाज़ दफ़ा परिंदे सरों पर आके बैठ जाते थे और वो समझते थे कि ये स्टैचूज हैं। तो इल्म का एक अदब है। इमाम बुखारी किसी से हदीस लेने गए और देखा कि जब वो लिख रहा था तो उसके कलम में से चिरचिर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कभी पुराने दौर की कलम और आपने तख्ती देखी होगी। तो वापस आ गए, हदीस नहीं ली। कहा क्यों भाई? कहा इसलिए कि जब इसका उस्ताद पढ़ा रहा था तो इसके कलम की इस आवाज ने इसको उस्ताद की बात सुनने से हो सकता है कि रोक लिया हो। उस्ताद ने कुछ कहा, इसने कुछ और लिखा, तो मैं ऐसे शख्स का इल्म ऑथेंटिक नहीं समझता। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को। तो लिहाजा स्टेशनरी रखें, आपको दो रंग के भी मार्कर हों, अच्छा लिखने वाला पेन लें। फिर इसी तरह स्टिकी नोट्स छोटे छोटे मिलते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी कहीं आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें आप पूरे नोट्स नहीं लेते लेकिन कोई रिमाइंडर लिख के लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। जो उस पारा होगा वो पारा आप लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जो आपको उस दिन दुआओं के कार्ड हैं, जैसे अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, बुक स्टोर से देखिए हसूले इल्म की दुआओं का कार्ड आपका शुरू में अब चल रहा है, वो आपके पास होना चाहिए, नोटबुक, पेपर, पेन, स्टिकी नोट्स और साथ दुआओं का कार्ड जो आपके साथ चल रहा है, और सबसे बढ़ के आपका पैशन। पैशन क्या होता है? शौक, जज्बा, क्योंकि इसके बगैर ये सारी चीजें बेकार होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलिएगा, बिफोर एंटरिंग द क्लास। आप क्लास में भी नहीं आए, आइडियल स्टूडेंट्स कौन होते हैं? नंबर एक, स्विच ऑफ सेलफोन। ये मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, हम सब इतनी एफर्ट के बाद जहां आते हैं ना, फोन पे आपको कोई भी मैसेज ना आए लेकिन आपका फोन तो सामने होता, तवज्जो भटकती है। जब आप जहाज में होते हैं तो वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अपने सेल फोन को स्विच कर दें वरना जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब होगा, यानी पता चला आप नॉर्वे की बजाय स्वीडन उतर गए या आपको लंदन ले गए, क्यों जी? आपके फोन की वाइबर्स थी। हम बंद करते हैं कि नहीं? अल्लाह ना करे पीछे इमरजेंसी भी हो जाए तो हमें नहीं पता, गुजर जाते हैं ना 8 घंटे। आपके लिए इस क्लास में शुरू में आने का टाइम और ब्रेक, इस दोनों में थोड़ा सा वक्त ज्यादा होगा और ब्रेक के बाद का वक्त थोड़ा कम हुआ करेगा। कितने लोग हैं जो ये कुर्बानी दे सकते हैं, खुद से कहें मेरा सेलफोन मेरे बैग में होगा, बंद होगा, वाइब्रेशन पे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं उसको नहीं करूंगी। ये है फर्स्ट चॉइस। ठीक है, टेबल पे नहीं होना, आपकी नजरों में ना हो, उसकी वाइब्रेशन आपको हिलाए, ये ना करें। अपने घर वालों को, मियाँ को, बच्चों को बता दें। जो सिस्टर्स जॉब करती हैं, क्या जॉब के दौरान फोन खोल सकती हैं? सुनती हैं? आपके जो रेगुलर स्कूल कॉलेज में आप जाते हैं वहां भी नहीं मुझे लगता खोलने देने चाहिए। तो ये कुर्बानी इस साल के ज़िलहज से सीखें। ये आपकी फर्स्ट चॉइस है कि आप अपने फोन को बंद करें। ये मेरे लिए भी, ये सब के लिए, ये हम सब आपके लिए हैं, हम इस पे काम करने को तैयार हैं। आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, क्या आप वहां बैठ के फोन सुनेंगे और यूं बुकला के उठेंगे? अच्छा, कुछ भी नहीं होगा ना, उसका एक नुकसान जरूर होगा, आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। आज अगर सीखते हुए नहीं छोड़ेंगे ना फोन हाथ से, तो कल सिखाते हुए भी नहीं छुटेंगे। दूसरी बात है कि आपके घर वालों को आदत पड़ जाएगी कि ये तो फोन उठा लेती हैं। ठीक है, बिल्कुल इस सोच से इस कमरे में आए कि ये मेरा जहाज है और मेरे पास फोन नहीं होना चाहिए, बार बार तवज्जो जाती है, तो हम इतने थोड़े से वक्त के लिए इसको कर लें, कोशिश कीजिए और आप देखिए ये मुश्किल नहीं। आप अपने बड़े फख्र से अपने घर वालों को आज बताइए जाके ये बात कि देखिए ये पार्ट है, और वो कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी डिसऑर्गेनाइज स्कूल में गए हैं, ये आपसे क्या कह रहे हैं। शर्त यह कि आप इसको एक दीनी स्कूल ना कहें, इसको दुनियावी कह लें, तो वो कहेंगे तो बड़े आला स्टैंडर्ड की बात है। ठीक है, फिर क्लास के शुरू होने से कम अज कम 5 मिनट पहले आप अपने इस जगह मौजूद हो। फिर उसके बाद कभी, खुदा ना खास्ता, आप दुआ करें ऐसा कभी भी ना हो, आप आए हुए हैं और क्लास शुरू हो गई है, ये कभी ना हो। मतलब क्या है कि आप देखिए, आप बाद में आए तो क्या वो जहाज रोकेंगे आपके लिए? वो तो कहें डोर्स बंद हो गए, आप तो बाहर जाएं, अगली फ्लाइट में आइएगा। लेकिन इन केस किसी मजबूरी में ऐसा हुआ कि आप तब पहुंचे इधर जब ये आपकी क्लास चल पड़ी है, तो क्या करें? नंबर एक, सलाम ना करें किसी को, अवॉइड करें, बस आप खामोशी से बैठे, क्योंकि बोलें तो सलाम करना होता है, वरना तो आप बैठ जाएं। लेकिन जब अंदर आए तो लोगों को, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर शुरू होता है, क्लास शुरू होती है, साइंस ऑफ गुड स्टूडेंट्स। आप सारे गुड स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं करते अच्छे स्टूडेंट्स? दे डोंट ईट एंड ड्रिंक, खाना पीना नहीं है। क्यों? दो खाने इकट्ठे नहीं चलेंगे। आप देखें कुछ खा रहे हैं तो साथ पानी भी तो नहीं पीते ना। ठीक है, ये हम इस वक्त रूहानी खाना खा रहे होते हैं। कोशिश करें किसी किस्म का खाना आपकी टेबल पे या आपके हाथ में, कुछ स्नैक्स, कोई बर्गर, कोई ऐसी चीज नहीं। रह गई बात, कुछ शुगर पेशेंट है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नींद आती है, उससे बचने के लिए अपने पास कोई खजूर, सूखी चीज, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता है कोई कफ ड्रॉप है, वो ऐसी रखें। और कभी अगर फील हो ऐसी कमी कुछ, तो खामोशी से उसको मुंह में डाल लें, लेकिन आवाज ना आए, कोशिश करें ऐसी चीज होगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि तफसीर सुनने के दौरान आप क्या करेंगे, लिखिए। लिखना कामयाबी की दलील है। जो लिखते नहीं है उनके नाम भी नहीं आगे लिखे जाते, वो बस हवाओं में गुम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी नोटबुक्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी सी हो। फिर आप देखिए कि क्लास में जल्दी जाना चाहते हैं या आपको, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो इजाजत ही नहीं है, आपका एक एक मिनट काउंट करना चाहिए हमें, लेकिन गेस्ट हैं, कोई साथी हैं, किसी की को मजबूरी है, तो फिर वो ब्रेक के बाद ऐसी जगह पे बैठें कि जब वो निकलें तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। और आपको तक इल्म की महफिल से निकलना, इसके लिए असलाफ क्या कहते थे? शका, बदबख्ती हो गई। क्या चीज़ है इसको जो इधर से उठा के लेगी, वो कितनी को अहम है। तो अवॉइड करें अपने अपॉइंटमेंट्स को, डॉक्टरों के बाकी चीज़ों को, बस इन दिनों को आप कह दें कि ये हमने अल्लाह को दे दिए और इसके दौरान आप दूसरी चीज़ों को नहीं कर सकते। फिर इसी तरह आप देखिए कि नेक्स्ट थिंग क्या है कि जब आप निकलते हैं ना तो दूसरों को भी निकलने को दिल करेगा, ऐसे होता है। ये अपने से नियत करें, हम सब जितने सुन रहे हैं, क्लास से बाद नहीं आना और ख़त्म होने से पहले नहीं जाना, ठीक है? इंशाल्लाह ताला इससे आप फील करेंगे कि ये अच्छा होगा। और वो कुरान सुनते वक्त ये सोचते हैं कि ये कुरान ही ऐसी चीज़ है कि जो हमें दुनिया की भी इज्जत देगी और आखिरत की भी देगी। फिर उसके बाद नोट्स लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप देखें कि पोलाइट रहें, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो अपने साथियों के साथ भी और स्टाफ के साथ। एक जुमला लिख लें उर्दू का, बादब बानसी, बानसीब बनना चाहते हैं ना तो बी मैनरफुल। आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही लेंगे। आपको कितना भी किसी से कुछ शिकवा हो जाए ना, आपकी आवाज़ एक ख़ास हद से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्ट रहिए, झूठ ना बोले। वजह कुछ थी, छुट्टी की कह कुछ दिया, 5 मिनट पहले ही लेट निकले थे और कह दिया ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, कोई कुछ नहीं कहेगा हमें, झूठ नहीं बोलना। सच्ची उजर सच्ची बात देंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर बेकार लैंग्वेज, फूल लैंग्वेज जिसको आप कहते हैं ठट्ठे हंसी मजाक, ये ना करें। इवन ब्रेक में, इवन दूसरी चीज़ों में आप इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर उसी तरह से जो ही लब्बैक प्ले हो, ब्रेक के बाद है या शुरू में देखें, तो समझे कि आपको बुलाया जा रहा है, अब इसके साथ ही आपने आ जाना है। इसी में ब्रेक को भी थोड़ा सा मैं आपको कह दूं कि मुझे पता है कि ब्रेक बहुत एक्साइटिंग होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन देखिए ब्रेक में भी हम स्टूडेंट्स ही होते हैं और हम सीकर्स ऑफ नॉलेज ही होते हैं। जो ही असमल हुसना की आवाज़ आपको जब भी ब्रेक में आए, इसका मतलब कि आपकी ब्रेक में आप टोटल तकरीबन 3.5 से 4 मिनट रह गए हैं, वो ख़त्म होते हैं, उसके बाद लब्बैक चलता है 1 मिनट कुछ सेकंड का। लब्बैक का मतलब यह कि आप इस कमरे में आके सुने और आपकी जो साथी हैं नेक्स्ट सेशन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। जो लोग ब्रेक में लेट आते हैं ना, यकीन करें वो दूसरों को बहुत तकलीफ देते हैं, ठीक है? तो इससे हम सब ने इंशाल्लाह अपने आप को बचाना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट थिंग क्या है कि स्टूडेंट्स बिहेवियर टू टीचर, ये बहुत अहम है। इसके लिए कुछ चीज़ें नोट्स करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा माहौल क्या है मस्जिदों में जाके कुरान सीखने का? वही बाजी हमें पढ़ा रही होती हैं, फिर बाद में ब्रेक में हम उसी के हाथ पे हाथ मार के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें करते हैं। इट्स ओके, गुड। वो दर्स होते हैं, वो हफ्ते में एक क्लास है या कह लीजिए कि महीने में एक दफ़ा गए, इट्स ओके। उस गैदरिंग का यही हक है, हम उसको गलत नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ आप एक फुल टाइम स्टूडेंट आए और आपने अपनी ट्रेनिंग करवानी है ना, तो आप क्या करें, सबसे पहले गिव फुल क्रेडिट टू टीचर एंड कंसिडर हर टू बी अ मास्टर। ये हजरत अली का कॉल है, कहते हैं जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखा दिया ना, वो मेरा मालिक है और मैं उसका गुलाम हूँ। दुनिया के जिस बाजार में चाहे मुझे जाके बेच दे। पहले सोचे, हाँ हमारी ये सोच है, वो तो हमें जरा सी एक से दूसरी बात कह दे, मुंह से कुछ ना के अंदर गुस्सा तो आ ही जाता है ना। यानी अपने आप को गुलाम समझे उस शख्स का जिसने आपको कुछ सिखा दिया, चाहे वो तजवीद सिखा रहे हैं, चाहे वो आपको कोई हदीस सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। टीचर तो फिर टीचर ही होता है, चाहे इवन अपने बच्चों को सिखाएं कि दुनियावी टीचर्स का भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उसके बगैर भी बात नहीं बनती। फिर करें क्या, जितनी मुमकिन है उतनी रिस्पेक्ट अपनी टीचर को दिखाएं। लिसन केयरफुली, जब वो बात करें तो गौर से सुने। बी पेशेंट बी हम्बल, यानी उनकी बात के वक्त पे या उनके साथ मामला करते हुए सब्र भी करें, आजिज भी हों। कभी भी ब्रेक शुरू एंड आखिर जब भी जिंदगी, जब तक जिंदगी है, आपकी आवाज़ अपने उस्ताद की आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, ये बेदबी के अंदर आता है। और फिर वो लोग लेते कुछ नहीं, मसला यह कि उनको फिर मिलता नहीं है। बात करनी है, कोई काम कहना है, कोई आस्क परमिशन, इजाज़त लें। ब्रेक जब होती है खासतौर पर, तो आप देखें वो टीचर्स की भी तो ब्रेक होती है ना। अगर उस वक्त आप टीचर से बात कर रहे हैं और या टीचर आपसे बातों में रहता है, तो एक तो आपकी ब्रेक मिस हो जाती है, एक उनकी मिस होती है, फिर सारा कुछ पीछे होता है। हर चीज़ को उसके वक्त पे करें, ठीक है? फिर इसी तरह जब टीचर बात करता है तो उस वक्त बीच में ना बोलें, रोके नहीं। आप पढ़ रहे हैं ना, सुनने के दौरान बीच में अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन आता है, लिख लें, ये बहुत अहम है। हाथ खड़ा करें उस वक्त जब वो कहा जाए कि कोई बात है। हाँ, कोई ऐसी बात है कि जिसमें आप, तो मुंह से बोलने के बजाय हाथ खड़ा कर दें। अगर मौका मुनासिब हो तो टीचर आपसे पूछ लेगा, ना पूछे तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। इमाम मुजाहिद जो इब्ने अब्बास के स्टूडेंट हैं, उनका कॉल है कि वो दो लोग इल्म नहीं सीख सकते, एक वो जिसमें हया है, शर्मीला बहुत है, और दूसरा जिसमें तकब्बुर है, खुद को बड़ा समझता है। फायदेमंद बातें थी।